चतुर्थ दिवस
जब जल पौधे की जड़ में सींचा जाता है तो फूल खिलते हैं, किंतु जब जल मात्र फूलों पर ही छिड़का जाता है तो फूल झर जाते हैं। दो चीजें हैं, मूल और फूल। महर्षि ने गत वर्ष ज्ञान साधना में बताया था, वटवृक्ष का रहस्य उसके बीज में है, शाखाओं, पत्तियों, टहनियों में नहीं। जो व्यक्ति मूल को जान लेता है और मूल को ही सींचता है, वह जीवन में फूल ही फूल पाता है। चलचित्र में यदि हम दृश्य को ही पूर्ण सत्य मान लें तो कभी हर्षातिरेक से एक बार फिर की रटना शुरू कर देंगे, या कभी इतने विलाप करने लग जाएंगे कि मन उद्विग्न हो जाएगा। चलचित्र में उसके पर्दे के सत्य को जान लेने के बाद ना ही हम अति प्रसन्न होंगे और ना ही उद्विग्न। इसलिए मूल को जानना परम आवश्यक है। आज का युग आध्यात्म और विज्ञान की समन्विति का युग है। महर्षि ने कल विज्ञान के बहुत बड़े सूत्र का प्रतिपादन किया और बताया कि मानना ही नहीं बल्कि जानना विवेक है। आप सभी प्रतिदिन प्रवचन में आध्यात्म के रहस्य को जानिए और भले ही एक वैज्ञानिक की भांति परीक्षण कीजिए, आप देखेंगे कि जीवन का आनंद दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। महर्षि ने कल इस बात के लिए सजग किया था कि यह सत्य है कि परम ब्रह्म ही पूर्णता लिए हुए हैं, किंतु उनकी पूर्णता को जानना इतना आसान नहीं कि हम उसे स्वतः समझ जाएं। उसके लिए सतत सत्संग श्रवण करना चाहिए। मैं परम पूज्यनीय महर्षि से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि चरम लक्ष्य विषय पर आज का प्रवचन प्रारंभ करें और आप सभी पूरे मनोयोग से श्रवण लाभ करें।
ओम मनाद्यानंदकूटस्थ ज्ञानानंत सदात्मने अभूतद्वैतजालाय साक्षिणे ब्रह्मणे नमः। बोधाभीषु शतैरबोधतिमिरं हृद्व्योमगं धारयन् प्रज्ञावारिधिमुन्नतिं च गमयन् सोमः सदो दीतियः तं संसारसहस्ररश्मिजनितक्लेशापहं दक्षिणामूर्तिं निर्मलयोगिचिन्त्यचरणां भोजं भजे शंकरं। यद्वक्त्रमानससरःप्रतिलब्धजन्मा भाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति प्रत्याशमुन्मुखविनीतविनीयभृङ्गास् तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यान योगे न शक्ति इति मनसि सदाहं चिन्तयन्नाद्यशक्ते रुचिरवचन पुष्पैरर्चनं सञ्चिनोमि रुचिरवचन पुष्पैरर्चनं सञ्चिनोमि ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्स्तनूमहि देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो यरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चरम लक्ष्य का विचार करते हुए कल आप लोगों को जरा कठिन पहाड़ के ऊपर उबड़ खाबड़ रास्ते से ले गए थे। कभी यदि आपने पर्वत की यात्रा की होगी, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ गए होंगे, कैलाश मानसरोवर की तरफ गए होंगे, तो देखा होगा कि जिस समय पहाड़ पर चढ़ते हैं उस समय सांस भी फूलता है और कुछ भी नजर नहीं आता, पता नहीं लगता किधर को जा रहे हैं। सारा ध्यान उस पगडंडी पर एकाग्र करना पड़ता है जिससे ऊपर जाना है। उस चढ़ाई का जो रस है वो तब पता लगता है जब हम शिखर पर पहुंच करके नीचे की उपत्यकाओं का अवलोकन करते हैं, नीचे की घाटियों को देखते हैं, तब उस सुंदरता को देख करके थकावट मिट जाती है। परंतु यदि चढ़ के न जाया जाए तो वहां का नजारा देख नहीं सकते। इसी प्रकार से कल आप लोगों को जरा चढ़ाया था, आज थोड़ा वहां से जो दृश्य देखना है वो बतलाते हैं। भगवान ने यहां प्रतिज्ञा की, ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते। ज्ञेय ब्रह्म की प्रतिज्ञा की, तो कल आप लोगों को बतला रहे थे ब्रह्म के दो रूप हैं, ध्येय ब्रह्म और ज्ञेय ब्रह्म। जिसका ध्यान किया जाए और जिसको जाना जाए, ध्यान में और जानने में क्या फर्क है? दोनों काम एक ही अंतःकरण से होते हैं। मोटी दृष्टि से कह सकते हो मन ही जानता है और मन ही ध्यान करता है। यद्यपि दोनों काम मन से होते हैं, मन की ही वृत्ति ध्यान रूप है और मन की ही वृत्ति ज्ञान रूप है, परंतु दोनों में आधारभूत फर्क है। सामने घड़ा रखा हुआ है, आंख के द्वारा मन उस घड़े को जैसा घड़ा है वैसा देखता है, ये हुआ ज्ञान। यहां हमारा मन उस घड़े को जानता जरूर है पर अपनी तरफ से कुछ करना नहीं पड़ता। अब उस घड़े के ऊपर हमने पंच पल्लव रख दिए, उसके ऊपर हमने नारियल रख दिया, अंदर जल भर दिया। अब हमने कहा वरुणम आवाहयामि ध्यायामि, इसके अंदर हम परमेश्वर के वरुण रूप का आवाहन करते हैं, इसमें वरुण रूप को लाते हैं और इसके अंदर परमात्मा के वरुण रूप का ध्यान करते हैं। वरुण रूप के विशिष्ट ध्यानों को जानना हो तो सिंध देश के लोगों से परिचय प्राप्त करना पड़ता है, वहां के मुख्य देवता ही वरुण हैं। वरुण का ही अवतार उनका झूलेलाल है, जिसकी जगह जगह पर सिंधी लोग मंदिर बनाते हैं। अब जब हम वहां वरुण का ध्यान कर रहे हैं तो हमको वो वरुण आंख से नहीं दिख रहा, परिश्रम करके हमको मन के द्वारा वहां वरुण की वृत्ति बनानी पड़ रही है, खुद नहीं बनती, प्रयत्न करके बनानी पड़ती है, क्योंकि वहां हमको वरुण दिख तो रहा नहीं है, ज्ञान तो हो नहीं रहा है। जब तक हम प्रयत्न करेंगे तब तक हमारा वरुण का ध्यान रहेगा और जैसे ही हमारा प्रयत्न ढीला हुआ शिथिल हुआ वैसे ही फिर हमको वहां मट्टी का घड़ा पंच पल्लव नारियल ये नजर आने लग जाएंगे। घट गेय है, वरुण ध्येय है। जहां जो चीज जैसी है उसको देखने का काम किया जाता है वह ज्ञान है, और जहां जो चीज जैसी नहीं है उसको देखने का प्रयत्न किया जाता है वो ध्यान है। ध्यान शास्त्र सम्मत भी होता है। शास्त्र ने कह दिया जलपूर्ण घट में वरुण का ध्यान करो, शालिग्राम में विष्णु का ध्यान करो, नर्मदेश्वर के अंदर शिव का ध्यान करो, ये शास्त्र सम्मत हुआ, शास्त्र के द्वारा कहे हुए तरीके से करना हुआ, परंतु करना तुमको पड़ेगा। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं वस्त्वधीना भवेद् विद्या कर्त्रधीना भवेद् विधिः। ज्ञान जो है वो वस्तु के अधीन है, सामने जैसा घड़ा रखा हुआ है वैसा ही घड़ा दिखना ये घड़े पर आधारित। काला घड़ा है काला दिखेगा, लाल घड़ा है लाल दिखेगा, सफेद घड़ा है सफेद दिखेगा। यहां जब हम घड़े को देख रहे हैं तो जैसा घड़ा है वैसा उसको समझने का प्रयत्न है, जानने का प्रयत्न है, देखने का प्रयत्न है। इस प्रयत्न में केवल सावधानी ये करनी पड़ती है कि जो हमारे देखने का ज्ञान का साधन है वो साफ हो, वे आंख में कोई दोष न हो। आंख में दोष न हो बस इसके लिए प्रयत्न है, आगे वहां जो चीज है वह दिखेगी। वस्तु के अधीन ज्ञान हुआ, परंतु जहां हमको ध्यान करना पड़ेगा वहां कर्तृधीना वो हमारे अधीन है, हम करेंगे तब तक है, हम नहीं करेंगे तो नहीं है। जब तक हमारा चित्त एकाग्र हो सकेगा तब तक वहां वरुण विष्णु शंकर हैं, और नहीं तो फिर घड़ा पत्थर हैं। अब कल संकेत किया था, सनातन धर्म के अतिरिक्त जितने भी दूसरे मत मतांतर हैं वह ध्येय ब्रह्म का निरूपण तो करते हैं, ज्ञेय ब्रह्म का निरूपण नहीं करते। चाहे जितने संसार के मत मतांतर होवे वह कहां से चलते हैं, तो वह किसी न किसी परमेश्वर का वर्णन करते हैं, चाहे उसका नाम खुदा रखें, गॉड रखें, कुछ भी रखें, यहोवा रखें, जिसका वर्णन करते हैं उसका हमको कोई अपरोक्ष ज्ञान नहीं है, कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, उसको देखने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए जैसा वहां कहा है वैसा मान करके ध्यान करना है। अगर हमको शालिग्राम में विष्णु का ध्यान करना है तो जैसा शास्त्र ने कहा है वैसा ध्यान करना है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम, पीत वस्त्र पहने हुए भगवान का ध्यान करना है। वहां अपनी बुद्धि से सोचोगे हम ऐसा ध्यान कर लें ऐसा ध्यान कर लें तो गड़बड़ा जाओगे। इसलिए जैसा वहां पर बताया है वैसा करना है, क्योंकि देखोगे तो वहां शालिग्राम का शालिग्राम, पत्थर का पत्थर। इसी प्रकार संसार के जितने मत मतांतर हैं वो ईश्वर का किसी न किसी रूप में निरूपण करते हैं, चाहे वो रूप निराकार हो साकार हो, परंतु ईश्वर ऐसा है ये प्रतिपादन करने के बाद कहते हैं इसका ध्यान करो। अतः ये ध्येय ब्रह्म ही हो सकता है, ज्ञेय ब्रह्म नहीं। ज्ञेय ब्रह्म वो होगा जो तुमको पहले ही सामने देखने में आ गया। सामने शालिग्राम की बटिया पड़ी हुई है, उसको जब तुम आंख से देखते हो तो तुमको जो दिख रहा है वो ज्ञान है। पहले पहल बटिया साफ नहीं दिखेगी, अथवा हीरा समझ लो, पहले पहल हीरे को देखोगे पहचान नहीं आएगी, उसको इधर उधर उलट पलट करके 50 तरह से 50 कोनों से देखोगे, दूसरे हीरों को देख करके उससे तुलना करोगे तो तुमको उस हीरे की असलियत का पता चलेगा। पर हर हालत में हीरा जैसा है वैसा ही देखोगे। कल बतलाया था, जिस पर्दे पर सारा चलचित्र दिखाई देता है वह पर्दा वास्तविक ज्ञेय है, ये कल बतलाया था। अब वो पर्दा है क्या चीज, किस पर्दे पर यह सारा संसार सारा ब्रह्मांड हमको दिख रहा है, तो मैं वह पर्दा है जिस पर सब कुछ हमको दिखता है। प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ दिखता है वो मैं के पर्दे पर दिखता है, बिना मैं के कुछ भी दिखता नहीं। और मैं को तुम सब जान रहे हो, रात दिन मैं शब्द का प्रयोग करते हो, केवल शब्द का प्रयोग नहीं करते, अंदर से तुम उसको समझते भी हो, मैं हूं। इसलिए मैं का जो ज्ञान है यहां पर ध्यान करने की जरूरत नहीं है, जो मैं तुम समझ रहे हो बस उसी के बारे में उसी को ध्यान दे करके उलट पलट के देखना है। इसलिए ज्ञेय ब्रह्म ईश्वर से प्रारंभ न करके मैं से प्रारंभ करता है। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी प्रिय पत्नी को जब उपदेश देते हैं तो कहते हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, तुम अपने आत्मस्वरूप को देखो, अपने आप को देखो, अपने आप को समझो। तुरंत लोगों को शंका होती है, मैं अपने आप को तो जान ही रहा हूं, अपने आप को जानने से यदि यज्ञात्वा मृतमश्नुते तो हम सब मुक्त हो जाए। तो जैसा हमने बतलाया, हीरे की अंगूठियां तो हजारों औरतें पहनती हैं, परंतु क्या उनमें से 100 में एक भी ऐसी है जो उस हीरे को ठीक से समझ सके? जब तक ठीक प्रकार के हीरों का ज्ञान नहीं कर लेगा तब तक देख तो उसी आंख से रहा है। जौहरी की आंख और तुम्हारी आंख में कोई फर्क नहीं है, ऐसा नहीं समझ लेना कि उसकी आंख में कोई विशेषता है, परंतु हीरे के विषय में उसने खूब विचार करके विवेक करके समझ लिया है, हजारों हीरों की परीक्षा करके, अतः उसके अंतःकरण में ऐसे संस्कार है हीरों के विषय में कि जब वह हीरा देखता है तो ठीक परीक्षा करके कह देता है, ये 80,000 का नग है और ये 1.5 लाख का नग है। फर्क आंख में नहीं, फर्क संस्कार में है। ठीक इसी प्रकार से मैं को तुम लोग रात दिन अपने हृदय में धारण किए हुए हो, जैसे औरतें हीरे की अंगूठी पहने हुए हैं। तुमको लगता है मैं अपने आप को जानता हूं, परंतु तुमने कभी भी ठीक प्रकार से अन्वय व्यतिरेक करके यह मैं क्या है इसको जानने का प्रयत्न नहीं किया। शास्त्र इसी बात के संस्कार को बतलाता है। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुज्रम्भते, या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी, सैवाहम। अन्वय व्यतिरेक करने वाला देखता है, एक मैं है देवदत्त इस शरीर वाला, ब्राह्मण हिंदुस्तानी दिल्ली में रहने वाला, ये एक मैं है। रात में सो गया, सोने के बाद सपने में देखता है हरिद्वार के ब्रह्मकुंड में जाकर के उस अत्यंत पवित्र और शीतल गंगा में गोता लगा रहा हूं, बड़ा आनंद भी आ रहा है। प्रत्येक बार जब गंगा में गोता लगाता हूं तो केवल शरीर ही ठंडा नहीं हो जाता, मन के ताप भी शांत हो जाते हैं, किए हुए पाप भी हल्के होते चले जाते हैं। तब तक कोई आवाज दे देता है, अरे देवदत्त चार बज गए, परीक्षा है, तैयार हो जा, 7 बजे से पर्चा है। देवदत्त उठ जाता है, देखता है मेरे कपड़े तो गीले थे, गोता लगा रहा था, परंतु कपड़े बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं, शरीर हल्का हल्का गीला जरूर है परंतु पसीने के कारण बदबू आ रही है, गंगा की शीतलता नहीं है। अब परीक्षा करने वाला, विचार करने वाला सोचता है, एक मैं देवदत्त जो यहां बिस्तरे पर दिल्ली में पड़ा हुआ गर्मी सहन कर रहा था, दूसरा मैं जो हरिद्वार की पावन गंगा में गोते लगा रहा था, ये मेरे दो रूप हैं कैसे, हूं मैं ही इसमें संदेह नहीं, क्योंकि जैसे मुझे यहां मैं के पर्दे पर दिख रहा है देवदत्त दिल्ली में गर्मी में पड़ा हुआ, वैसे ही मुझे मैं के पर्दे पर दिख रहा था हरिद्वार की पावन गंगा में गोता लगा रहा, दोनों इस मैं के पर्दे पर एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क। अगर ये विचार करने का प्रयत्न करें, शायद मुझे उठाया गया तो मैं वहां से भाग के यहां आ गया हूं, तो हवाई जहाज से भी आऊं तो वहां से यहां पहुंच नहीं सकता। इतना ही नहीं, वहां जब गोते लगा रहा था तो 12 बजे का सूर्य तप रहा था, पूरी तेजस्विता में था, यहां जब मैं पड़ा हुआ हूं तो ठीक उससे विपरीत प्रातः काल के 4 बज रहे हैं, अंधेरे का समय है। इसलिए समय की व्यवस्था भी बनती नहीं, निश्चित कुछ न कुछ फर्क है। ये शरीर, स्थूल शरीर वहां स्नान नहीं कर रहा था, ये विचार करने से निश्चय हो जाता है, मैं तो वही था परंतु ये शरीर नहीं था, वहां मेरा मन था। विचार होता है मन वाला मैं होऊंगा, क्योंकि यहां भी मन वाला हूं वहां भी मन वाला था, मन तो दोनों जगह था, दोनों जगह अनुभव हो रहा था। फिर याद आता है ये सपना देखने के पहले क्या कर रहा था। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतराया संविदुज्रम्भते। जिस दिन रात भर सपने आते रहे, उस दिन जब सवेरे उठते हैं तो शरीर टूट रहा होता है, सिर भारी होता है, सब लोगों पर झुंझलाहट आने लगती है, कोई काम करने का उत्साह नहीं रहता। और जिस दिन सपने न आए हों, अत्यंत कम आए हों, अनुभव होता है मैं ऐसा सोया था, मैंने कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना। यदि वहां मन होता तो कुछ तो जानता, कुछ भी नहीं जाना। क्या जाना? तो ये जाना कि उस सुषुप्ति में जाकर के आए, जब सुषुप्ति में गए थे तो बिल्कुल थके हुए गए थे, उसमें से वापस आए तो बिल्कुल ताजे होकर के आए। ऐसा लगता है जैसे आजकल एक तरह की रोशनी आती है, उसको आपात प्रकाश कहते हैं, इमरजेंसी लाइट कहते हैं, उसको घंटे दो घंटे जला लो, उसके बाद बिजली के खटके में उसको लगा दो, चार छह घंटे के बाद फिर वैसी ही जलने लगती है, पुनः उसमें शक्ति का आधान हो गया, रिचार्ज हो गई। किससे रिचार्ज हुई? तो वो जो बिजली चल रही थी उससे हुई। यदि बिजली गई हुई होवे तो उसको चाहे तुम 3 दिन तक लगाए रखो, वो क्या रिचार्ज हो जाएगी? जो बिजली चल रही थी उससे आई। ठीक इसी प्रकार सुषुप्ति से हम ताजे होकर के उठे। अति धन्य वेद कहता है, सता सौम्य तदा संपन्नो भवती। सत ब्रह्म के साथ उस समय हमारा संबंध हो जाता है, इसलिए हमारी सारी थकावट मिट करके हम पुनः उस शक्ति को प्राप्त करके रिचार्ज हो करके खड़े हो गए। अब वहां मन नहीं था, क्योंकि मन ही तो वो चीज है जो हमको परमेश्वर से संबंध करने नहीं देता। मन के कारण ही तो हम उससे अलग हुए हुए हैं। गहरी नींद में हमको इस शक्ति की प्राप्ति हुई, इससे पता लगता है कि उस समय वहां मन था नहीं। इसलिए परमात्मा के साथ हमारा ऐसा एकमेक संबंध हो गया कि हमारे अंदर वह सारी शक्ति आ गई। इतना ही नहीं, केवल शक्ति आने से ही परमात्मा का पता लग रहा हो ये बात नहीं है। उठ करके एक और अनुभव होता है, मैं बड़े आनंद से सोया, बड़े आनंद के साथ सोया, ये भी तो अनुभव होता है। वो आनंद कौन सा था? किसी विषय का आनंद तो था नहीं। न वहां तुम रसगुल्ला खा रहे थे, न वहां तुम खीन खाफ का या क्या वो नाइलॉन का कपड़ा पहन रहे थे, न वहां कोई तुम नाच देख रहे थे। किस चीज का आनंद आया? तो किसी विषय का आनंद तो था नहीं। खुद ही कहते हो हमने वहां कुछ नहीं जाना। निर्विषय आनंद को ही तो ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। जब तुम कहते हो वहां बिना किसी विषय के मैं आनंद के साथ सोया, तो बिना किसी विषय के आनंद बने परमात्मा। ये जो आनंद है यह तुम्हारा अनुभव बतला रहा है कि तुम उस समय परमात्मा के साथ थे, परमात्मा से एक हुए, और उठने के बाद तुम्हारे में शक्ति आई। उस शक्ति की भी अन्यथा अनुपत्ति से वहां पर तुम परमात्मा के साथ थे, ये सिद्ध होता है। अब तुम वहां पर भी थे और वहां बिना मन के थे। जब तक विचार नहीं किया था तब तक सोचते थे मैं देवदत्त हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। विचार में प्रवृत्त होने पर देखा कि अरे मैं ये नहीं हूं, मैं मन हूं। आगे और विचार किया तो पता लगा कि मैं तो मन भी नहीं हूं। इस प्रकार मैं का विश्लेषण करते करते उस मैं के अंदर अंततोगत्वा जो शुद्ध परमात्मा का स्वरूप है वो दिखता है। अब जैसे हीरे का पारखी बनने के लिए पहले तो हीरे के विषय में तुमको शास्त्र पढ़ना पड़ता है, रत्न शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। उसके द्वारा तुमको हीरे के लक्षणों का पता लगता है, परंतु केवल लक्षणों का पता लगने से काम नहीं होता। केवल किताब को पढ़ करके कोई रत्नों का पारखी नहीं हो सकता। जो रत्न का जानकार है उसके पास जाकर के उस परखने के तरीके को सीखना पड़ता है, और अनेक रत्नों को उलट पुलट करके देखना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी यह जो तुम्हारा मैं है, आत्मा है, इसके स्वरूप को बतलाने वाले जो उपनिषद और उपनिषद मूलक जो शास्त्र, पहले तो उनको पढ़ करके अपने मन में संस्कार प्रबल करने पड़ते हैं, समझना पड़ता है क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है। परंतु केवल वहां तुमने पढ़ लिया इसलिए तुमको परख आ गई, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसने अच्छी तरह से इस आत्म तत्व को भली प्रकार जाना है, उससे ये परखना सीखना पड़ता है। शास्त्र से पता तो लग गया, लेकिन पता लगने मात्र से काम नहीं होता। एक बार कहीं हम पढ़ रहे थे, कोई लड़की, आजकल वो ईसाई पाठशालाओं में जाती है, कॉन्वेंट स्कूल्स में जाती है, वहां दुनिया भर की चीजें तो पढ़ती है, परंतु खिचड़ी कैसे बनाना ये वहां कोई नहीं पढ़ा। बहुत सी लड़कियां वहां जाकर के कुकिंग लेसन लेती हैं, पाक शास्त्र को सीखती हैं। उनकी माताएं बिचारी भोली भाली होती हैं, हमसे कहती हैं महाराज इसने कुकिंग लेसन ले रखा है। हम उससे पूछते हैं क्या सीखा, तो कहती है सूप बनाना सीखा, बेक्ड वेजिटेबल बनाना सीखा, पिस्सा बनाना सीखा। हमने कहा भली मानस, बनाना तुमको खिचड़ी पड़ेगी, फुलका बनेगा, साग बनेगा, भरमा करेला पड़ेगा, ये भी सीखा? कहते ये तो सिखाते थे। तो जब वो सोचते हैं ये सीख रही है, तब भी जो सीखती है उसका कोई प्रयोजन नहीं। अब ऐसी ही एक लड़की थी, अब वो लड़की विवाहित होकर के जब गई तो एक दिन उसका जो रसोईया था वो आया नहीं, सास बीमार थी। उससे कहा कुछ बना ले बेटी, तो उसने भारतीय पाक विज्ञान की एक पुस्तक खरीद रखी थी, तो वो पुस्तक देख देख के बनाने लगी। अब जब पुस्तक देख देख के बनाने लगी तो पुस्तक से ये कैसे पता लगेगा कि फुलका ठीक सिक गया के नहीं? तवे पर डालो ये तो लिख देंगे, लेकिन तवे से हटा करके कोयले पर खीरे पर कब डालो ये कहां कैसे पता लगे? ये तो कोई बताएगा तभी पता लगेगा। नतीजा ये हुआ कि सारी कच्ची रोटियां बना के रख दी। कहती है मैंने तो बिल्कुल जैसा किताब में लिखा वैसा किया है, नतीजा आया नहीं। ठीक इसी प्रकार से चाहे जितने तुम लक्षण श्रवण के द्वारा समझ लियो, परंतु जब तक परख करना आएगा नहीं तब तक उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होगा नहीं। उसके जो पिताजी थे बड़े संस्कारी, उन्होंने अपने बच्चे को भली प्रकार से वेदांत का विषय सिखा दिया था, 6-7 साल का बच्चा था। हमसे कहने लगे महाराज देखिए मैंने इसको दृढ़ वेदांत ज्ञान करा दिया। हमने कहा बहुत अच्छा किया। अब माता पिता की इच्छा होती है कि बच्चे का ज्ञान जरा प्रकट भी होवे। कहने लगा बताओ, तो कहने लगा दृश्य दृष्टा से अलग होता है, 6-7 साल का बच्चा जैसा रटा दिया रट लिया, जैसे मैं हाथ को देखता हूं तो हाथ से अलग हूं, शरीर को देखता हूं तो शरीर से अलग हूं। वो सारी की सारी प्रक्रिया उसने मन से अलग हूं, बुद्धि से अलग हूं, चित्त से अलग हूं सब सुना दिया। अब पिता बड़े प्रसन्न हो रहे थे, कहने लगे क्यों महाराज इसने बहुत ठीक कहा? हमने कहा बिल्कुल ठीक कहा। फिर हमने उससे कहा अच्छा बेटा तू अपने हाथ को देखने वाला है इसलिए तू दृष्टा हाथ से अलग है, ऐसे ही तेरे पिता अपने हाथ को देखते हैं तो वो भी अपने हाथ से अलग है, वो भी अपने शरीर से अलग है, इंद्रियों से अलग है, मन से अलग है। कहने लगा हाँ। हमने कहा एक वो आत्मा एक तुम आत्मा? कहता है हाँ। अब वो बेचारे पिता उसको पीछे से दबा में कैसा नहीं बोलो, क्योंकि आत्मा तो एक है। पुस्तक से रटने से नहीं होता है, जब तक उसको उलट पलट करके करना नहीं जानोगे। इस उलट पलट करके जानने के लिए ही हमारे शास्त्रों के अंदर पुराणों के अंदर इतना विस्तार है। जीव और ईश्वर की एकता का प्रतिपादन करते हुए महाभारत में बड़ी विचित्र कथा आई है। लघुचंद्रिका के अंदर गौड़ ब्रह्मानंद सरस्वती लिखते हैं, द्रौपदी शाकमास्वाद्य त्रिलोकीयेन तर्पिता तज्जीव ब्रह्मणोरैक्ये साक्षी ब्रह्मैव नो हरिः। जीव और ईश्वर की एकता में प्रमाण क्या? तो जिस समय युधिष्ठिर जंगल में भेज दिए गए, जन्म भर राजा रहे, इसलिए कोई भी अतिथि आवे तो अतिथि की सेवा करना उनका सहज स्वभाव था। अब सोचने लगे जंगल में मैं कैसे क्या इंतजाम करूंगा। द्रौपदी ने कहा, आप न घबरावें, मेरे पास देवताओं की कृपा है, मैं उनकी कृपा से इसकी व्यवस्था कर लूंगी। द्रौपदी ने एक बटलोई प्राप्त की, एक भगोना प्राप्त किया। उसकी विशेषता ये थी कि जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक उसमें से जिस जिस भोजन की वो इच्छा करेगी वो भोजन उतने ही परिमाण में निकलता चला जाएगा। अब वहां नियम ये चलता था, जो जो आते जाते थे उन सबको युधिष्ठिर भोजन के लिए बुलाते जाते थे, पंगतें लगती जाती थी, अनेक ऋषि महर्षि अन्य लोग सब वहां आते थे। जब सबका भोजन समाप्त तो हो जाता था और कुछ नहीं बचता था तब द्रौपदी उसमें से भोजन करती थी, बस उसके बाद उसमें से नहीं निकलता था। इस बात का दुर्योधन को पता था। दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति स्वभाव से ही भले आदमियों को कष्ट देना चाहता है। दुर्योधन ने विचार किया, मैंने सोचा था इनको खाने पीने का कष्ट होगा, उसकी जगह ये तो सबको खिलाते पिलाते आनंद से रहते हैं, इसमें कोई न कोई विघ्न करना चाहिए। तो एक बार उधर से दुर्वासा महर्षि निकले। दुर्वासा महर्षि अपने ग्रंथों में पुष्पिका के अंदर भी अपने आप को क्रोध भट्टारक लिखते हैं। मेरी विशेषता क्या है? तो क्रोध करने में मैं बड़ा कुशल हूं। अब दुर्वासा की दुर्योधन ने बड़ी सेवा की। प्रसन्न होकर के दुर्वासा ने कहा, अरे दुर्योधन तुमको कुछ चाहिए तो मांग ले। उसने कहा, जी हमारे भाई साहब युधिष्ठिर हैं, आप उनके यहां जाकर के भिक्षा करिएगा, लेकिन जाइएगा दिन में 3 बजे के बाद। तो उसको पता था कि 1-1.5 बजे तक भोजन खत्म हो जाता है, क्योंकि हिंदुओं के भोजन का समय है 10-10:30 बजे, अंग्रेजों के भोजन का समय है दिन में 1:30 बजे। अब जब 10-10:30 से पंगत शुरू होगी तो ज्यादा से ज्यादा 12:30-1 तक भोजन समाप्त तो हो जाएगा। उसने कहा 3 बजे के बाद जाइएगा। दुर्वासा के पास बड़ी जबरदस्त मंडली रहती, जैसे हम लोगों के साथ 20-25 महात्मा रहते हैं, बहुत से लोग उसी से घबराते हैं। कई बार कहते हैं महाराज आप भोजन करने आइएगा, सबको लेके मत आइएगा। दुर्वासा के साथ 60,000 रहा करते थे, दिल्ली वालों की तो छाती बैठ जाए कहीं 60,000 को देख लें तो। दुर्वासा पहुंच गए, उन्होंने कहा ठीक है इसमें तो कोई बात नहीं। जैसे ही युधिष्ठिर ने उनको देखा, युधिष्ठिर की तो आदत थी, नमस्कार किया, पाद्य अर्घ्य दिया और हाथ जोड़ के कहा महाराज भिक्षा करिए, भोजन करिए। दुर्वासा ने कहा इसीलिए तो आया हूं। भीम जरा वहां सावधान था, भीम ने कहा गंगा के किनारे जाके आप लोग स्नान ध्यान करके आइए, तब तक भिक्षा तैयार हो जाती है। दुर्वासा चले गए। अब दुर्वासा के जाने के बाद भीम ने कहा भैया कोई समय का भी हिसाब रखा करो, अब कहां से आएगा खाने का हिसाब किताब। बोले भाई मैंने तो कह दिया बुलाओ द्रौपदी को। द्रौपदी को बुलाया, अरे भाई खाने पीने का कुछ इंतजाम। बोले अब क्या इंतजाम हो गए, खा पी के पूरा हो गया, बर्तन भी सब मच गए, अब कुछ नहीं हो सकता। कोई घर में अनाज तो उनके था नहीं कि उससे भोजन तैयार कर लिया जाए। युधिष्ठिर ने कहा भाई कुछ तो करो। द्रौपदी कहने लगी अब मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता है, मेरा तो जो कुछ सामर्थ्य था वो इस बटलोई में था, परंतु आप इतना कहते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं, शायद वो इसकी कोई व्यवस्था बनावे। द्रौपदी भी भगवती के अंश का अवतार थी, इसलिए द्रौपदी के स्मरण करते ही भगवान तुरंत उपस्थित हो जाते थे। कई बार ऐसे प्रसंग आए थे, द्रौपदी ने भगवान का जैसे ही आह्वान किया, उनका आवाहन किया, उनको बुलाया, भगवान आए। वो तो सर्वज्ञ हैं, आते ही कहते हैं अरे द्रौपदी इस समय बड़े जोर की भूख लगी है, तूने क्यों बुलाया ये तो पता नहीं, आज सवेरे से खाने का कोई जुगाड़ बैठा नहीं था, तेरा काम तो बाद में करेंगे, पहले कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने कहा भगवान इसीलिए तो याद किया है। बोले तेरी बात फिर सुनेंगे, तेरी बटलोई की बड़ी प्रशंसा सुनी है, निकाल उसमें से कुछ खाने का माल। बोले महाराज मैं तो खा चुकी, अब उसमें से क्या निकलेगा। बोले कुछ तो बचा हुआ होगा उसमें। कहने लगे माज लिया। बोले लेके तो आ। बटलोई लेके आ गई द्रौपदी। बोले देख लीजिए मजी हुई है अंदर कुछ नहीं। तो बटलोई के अंदर सेंध होती है, नीचे का हिस्सा अलग होता है, ऊपर का हिस्सा अलग होता है, बीच में उसको मिला दिया जाता है, वेल्ड कर दिया जाता है। भगवान कहने लगे अच्छा देखता हूं, तो हाथ डाल के घुमाने लगे तो उनको छोटा कहीं से धनिये का एक पत्ता उस सेंध के अंदर रखा हुआ था, फंसा हुआ था, जो मांजने से साफ नहीं हुआ था, वो हाथ लग गया, उन्होंने उसको हटाया। कहने लगे झूठ बोलती है कुछ नहीं है, देख ये मिल गया। और झट से वो कुछ कहे अरे महाराज झूठा है, उन्होंने तो खा लिया। खाने के साथ ही संकल्प कर लिया कि इससे सारे प्राणी तृप्त हो जाएं। अब वहां दुर्वासा महर्षि स्नान आदि करके आराम से बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। उनके शिष्यों में कोई संध्या वंदन कर रहा था, कोई शालिग्राम का अभिषेक कर रहा था, कोई नर्मदेश्वर का अभिषेक कर रहा था, कोई योगाभ्यास कर रहा था, सभी प्रकार के शिष्य थे साधक लोग। अब जो जहां जो कर रहा था हरेक को अकस्मात लगा कि पेट ठस भर गया है, फूल गया है। दुर्वासा ने देखा कि अरे मेरा पेट अकस्मात भर कहां से गया, ये तो ठस हो गया। दुर्वासा इधर उधर देखने लगे तो जितने उनके शिष्य थे सब अपना काम छोड़ करके अपने अपने पेट के ऊपर हाथ फेर रहे हैं और याद कर रहे हैं अगस्त्यम कुंभकर्णं च शनिं च वडवादलम आहार पचनार्थम वै स्मरेत भीमं च पंचमं। बैठ करके याद कर रहे हैं कि हमारे खाए हुए सारे अन्न को पचा दिया जाए। दुर्वासा देख के कहने लगे रे इस समय बोलने का मंत्र अभी भिक्षा तो हुई नहीं है, पहले ही बचाने का मंत्र। कहने लगे महाराज हुई हो या नहीं हुई हो अब तो आप भोजन करने जाइएगा, हम तो ठस हैं, हमसे तो नहीं जाया जाएगा। दुर्वासा समझ गए, पता तो उनको था ही, जरूर इसके अंदर कोई भगवान की दिव्य लीला है, इसलिए अच्छा काम तो यही है कि यहां से चल दिया जाए, नहीं तो पता नहीं किस वहां से तो कह के आएंगे आके खाएंगे, उन्होंने सामान बना लिया होगा। उन्होंने सब शिष्यों से कहा पेट भरा तो उधर नहीं चलो, अब आगे चलो। इधर भगवान ने भीम से कहा, कह रहे भीम बड़ी देरी हो रही है, जाकर के उनको बुला के ला, अब तो बहुत समय हो गया। भीम जब गंगा के तट पर पहुंचता है तो देखा सब लोग अपने दंड कमंडलू उठा करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। भीम कहने लगा अरे भगवान उधर नहीं चलिए भोजन करने, तब तक वहां दुर्वासा भी जा रहे थे। दुर्वासा ने कहा वहां श्री कृष्ण तो नहीं तुमने बुला रखे? बोले हाँ वो तो पधार गए हैं। बोले तो उनसे कह देना कि अब पेट भर करके कहते हो भिक्षा करने आओ, अब तो हम जाते हैं। भीम ने आकर के ये बात सुनाई। भगवान ने क्यों द्रौपदी के उस चीज को खाया, वो तो वैसे ही संकल्प कर सकते थे, क्योंकि युधिष्ठिर ने कहा था भिक्षा के लिए आइए, इसलिए युधिष्ठिर के अन्न के द्वारा ही उनका पेट भरने का निमित्त बनाना था, नहीं तो उनका तो पेट भर जाता लेकिन युधिष्ठिर की सत्यवादिता नहीं स्थिर रहती। युधिष्ठिर की भी बात रह गई, काम भी हो गया। अब विचार करके देखो, एक के खाने से दूसरे की तृप्ति क्या कभी हो सकती है? भोजन तुम करो और तुम्हारी कितनी भी प्रिय पत्नी होवे उसका पेट भर जाएगा, जो खाएगा उसी का ना पेट भरेगा। ये तभी संभव है जब जीव और ईश्वर में भेद न होवे। जीव और ईश्वर का अभेद होगा तब तो एक के खाने से दूसरे का भी, क्योंकि वो दूसरा है नहीं। यदि भेद होगा तो ये कभी संभव नहीं। इसलिए गौड़ ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं द्रौपदी शाकम आस्वाद्य त्रिलोकी ये न तर्पिता। द्रौपदी के उस छोटे से पत्ते को खा करके सारी त्रिलोकी को तृप्त करके भगवान ने क्या सिद्ध कर दिया? तो तज्जीव ब्रह्मणो रैक्ये, सारे जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है, इसलिए सबकी तृप्ति हो सकती है। साक्षी ब्रह्मैवनो हरि, जो ब्रह्म रूप हरि है वही हमारे इस सिद्धांत के साक्षी हैं। तो शास्त्रों के अंदर किस प्रकार इस चीज को समझा जाए, इसको तरह तरह से समझाया गया। तो यह जो मैं का स्वरूप है, यदि हम ईश्वर को पहले लेते हैं तब तो हमको ईश्वर के रूप को मानना पड़ता है, परंतु मैं हमारे लिए प्रत्यक्ष सिद्ध है, अपरोक्ष है, इसलिए उसको जब हम ध्यान से देखते हैं, जब हम उसको ये करके देख रहे हैं तो हमको किसी चीज को सोचना नहीं पड़ता। केवल उस मैं के रूप में किस किस प्रकार से उसमें अवापोद्धार हैं, किस प्रकार से अन्वय व्यतिरेक हैं, ये गुरु से समझ करके जब करते हैं तो मैं तो सामने जैसा है वैसा ही दिख जाता है। हमको जितने ज्ञान है वो मैं के साथ कुछ मिल करके ज्ञान है। ठीक जिस प्रकार से सोने की डली हमारे हाथ में है परंतु उसमें कुछ खोट मिली हुई है। अब हमको सोना बाजार से नहीं लाना है, केवल उसको गर्म करके सुहागा डाल करके खोट को अलग कर देना है। इसी प्रकार ये मैं जो है ये ब्रह्म स्वरूप है, परंतु इसके अंदर देहम प्राणम अपीन्द्रियाण्य विचलाम बुद्धिंच शून्यम विदुः, इसमें शरीर प्राण मन इंद्रियां अज्ञान सबकी हमने खोट मिला रखी है, इसलिए हमको लगता है कि ये सोना नहीं है। ये ब्रह्म के अंदर हमको कहीं से कुछ लाना नहीं है, इन खोटों को परिक करके हटा देना है तो मैं जैसा है वैसा ही उसका ज्ञान हो जाता है। ये जो विलक्षण अपने सनातन धर्म की चीज है ये और कहीं नहीं है। अन्यत्र सर्वत्र अज्ञात ब्रह्म को लेकर के चलते हैं और हम ब्रह्म के ज्ञेय स्वरूप को लेकर के चलते हैं। ज्ञेय वो होता है जो तुम्हारे सामने है पर तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे सामने मैं रूप से परब्रह्म परमात्मा है परंतु तुम समझ नहीं रहे हो। जैसे ही समझोगे वैसे ही वहां पर तुमको उसका साक्षात्कार हो जाएगा। तो यह जो पर्दा मैं का है इसी का विश्लेषण करने के लिए भगवान ने कहा ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते, इसकी परीक्षा से ही तुमको अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात सारी मृत्यु जो अल्पताएं हैं वो दूर होकर के पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। इस अन्वय व्यतिरेक के स्वरूप को स्वयं अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। ओम
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्भूस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो यरिष्ठ, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।